जन्मभूमि अयोध्या में विराजमान 31 फुट उत्तुंग भगवान भरत को, राजधानी दिल्ली के कनॉट प्लेस क्षेत्र में विराजमान 31 फुट उत्तुंग भगवान भरत को, मांगी तुंगी के भरत उद्यान में विराजमान पद्मासन भगवान भरत चक्रवर्ती सिद्ध भगवान को एवं सिकोहाबाद आदि अनेक स्थानों पर विराजमान भरत भगवान की चरणारविंद में नमन करते हुए आगे का चरित्र प्रारंभ करती हूँ। भगवान भरत प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव के प्रथम पुत्र के रूप में, जिन्होंने चैत्र कृष्णा नवमी के दिन जन्म लिया और पिता के जन्म के समस्त शुभ योगों को प्राप्त ऐसे चक्रवर्ती के रूप में, जिनकी पूरी मान्यता बाल्यकाल से ही रही। कहते हैं कि विधि को जानने वाले तीर्थंकर ऋषभ देव ने अनुक्रम से उस अपने प्रथम और ज्येष्ठ पुत्र के अन्नप्राशन, चौल संस्कार, उपनयन संस्कार आदि स्वयं अपने हाथों से किया था। माने जब वह पुत्र 7-8 महीने का हो गया तब उसको दूध भात दही भात खिला करके मंत्रोच्चारण के साथ प्रथम अन्नप्राशन क्रिया कराई। ये आदि पुराण के अंदर बहुत ही विस्तृत वर्णन के साथ उपलब्ध है। आज भी हम उन आचार्य जिनसेन के अनुसार अनेक गर्भवती नारियों के संस्कार करते हैं और जन्म के बाद भी ये संस्कार बच्चों पर किए जाते हैं, जिससे उनका जीवन बहुत ही धर्ममय आदर्श रूप से संस्कारित होता है। तो भरत जैसे चक्रवर्ती पुत्र के भी भगवान ऋषभ देव ने स्वयं अपने हाथों से जिन संस्कारों को किया था, ऐसे उन संस्कारों को आज भी आप अपने बालकों के अंदर, चाहे कन्या हो चाहे पुत्र हो, सबके अंदर कराना नहीं भूले। चौल संस्कार, मुंडन, जिसको आज लोग इतना महत्व तो नहीं देते हैं, लेकिन मुंडन संस्कार भी होता है। और कई बार मैं देखती हूँ अयोध्या में आके लोग मुंडन कराते हैं, तीर्थों पर ले जा करके मुंडन कराते हैं। ये सब संस्कार है, यज्ञोपवीत संस्कार। 8 वर्ष के होने पर, यानी गर्भकाल से जोड़ेंगे तो जन्म के बाद 7.25 महीने, 9 महीने गर्भ के मिला करके, और जन्म के बाद 7.25 वर्ष के होने पर बालक का यज्ञोपवीत संस्कार किया जाता है। 3 लड़की जनेऊ जो धागे की होती है, उस जनेऊ को धारण कराया जाता है, उसके मंत्र होते हैं। ये एक संस्कार है, भरत का भी ये संस्कार किया गया। और कहते हैं कि घुटनों तक लंबी लंबी जनेऊ को धारण करते थे भरत। आज देखा जाता है कि कुछ लोग कह देते हैं कि ये जैनियों का चिन्ह नहीं है यज्ञोपवीत, ये सबसे बड़ा चिन्ह है। जैसे हमारा चिन्ह है मयूर पंख की पिच्छी का, ऐसे आपके पुरुषों का, बालकों का चिन्ह है, युवाओं का चिन्ह है जनेऊ। एक समय था जब जनेऊ पहने बिना अभिषेक नहीं करते थे, नहीं करने दिया जाता था। हमने घर में भी देखा है अपने पिता ताऊ चाचा आदि को कि जनेऊ हमेशा धारण करते थे, अगर कभी जरा सी टूट जाए उसको कहते बढ़ गई जनेऊ, और ऊपर से जनेऊ नहीं लेकर के नीचे से उसको उतारते थे। माने एक क्षण के लिए भी जनेऊ के बिना नहीं रहते थे और उसमें अष्टमूल गुणों का पालन करते थे। कुछ भी नहीं, मध्य मास मधु का त्याग करके, 5 उदंबर फलों का त्याग करके, ये नशे वाली चीजें भी हैं और त्रस हिंसा को कराने वाली भी हैं, इसलिए आठ वस्तुओं का, अभक्ष्य वस्तुओं का त्याग करना अष्ट मूल गुण है। मूल गुण माने जड़, जड़ है अपनी। जब जड़ मजबूत होगी तो अपना मंजिल तो मजबूत हो ही जाएगी। ऐसे अष्ट मूल गुणों के पालन स्वरूप यज्ञोपवीत संस्कार को आज भी कराते हैं। हमने कुछ समय पहले ही लगभग 3 साल हुए होंगे, तब देखा आचार्य विद्यासागर महाराज जी ने भी एक सभा के अंदर बच्चों का चौल संस्कार किया, उपनयन संस्कार किया और उनको अपने हाथ से मस्तक के ऊपर केसर से स्वस्तिक बना करके और जनेऊ धारण कराई। तो ये संस्कार हमेशा ज्ञानमती माता जी हमें कहती हैं कि आचार्य शांति सागर महाराज, वीर सागर महाराज, शिव सागर महाराज, धर्म सागर महाराज, ये सब बिना जनेऊ धारण करने वाले श्रावक के द्वारा अभिषेक भी नहीं देखते थे। इसलिए आप सब ध्यान रखो, अभिषेक के समय, पूजन के समय, मंडल विधान के समय, हवन के समय जनेऊ धारण करना अत्यंत आवश्यक है। तो कौमार्य अवस्था में जब तक विवाह नहीं होता तब तक 3 धागे की जनेऊ होती है और कंधे पर लेकर बाएं कंधे से दाहिने हाथ के नीचे से उसको डालते हैं। पुरुष लोग ही धारण करते हैं, महिलाओं के लिए नहीं है, महिलाओं के लिए और दूसरे चिन्ह है। तो और जब विवाह हो जाता है तो 6 धागे की जनेऊ माने अब उनके ऊपर डबल जिम्मेदारी आ गई, अपनी और अपनी धर्म पत्नी की जिम्मेदारी। जीवन भर धर्म को निर्वाह करने का, धर्म पत्नी के साथ नियमों का पालन करने का उनको संकल्प होता है। इसलिए 6 धागे की जनेऊ अब आपको मैं इसलिए आज बता रही हूँ कि देखो युग की आदि में भरत चक्रवर्ती तक को साक्षात भगवान तीर्थंकर ने अपने पुत्र के रूप में उन्हें ये जनेऊ संस्कार कराया था। ऐसे भरत अपने पिता तीर्थंकर ऋषभ देव के समान ही गमन करते थे, बैठते थे, सारे गुण उनके तीर्थंकर पिता के समान ही थे। और कहते हैं कि उनके लिए कुंडल, हार, मुकुट, भुजबंद, अंगूठी आदि अनेक अलंकारों को ऋषभ देव ने बनवा करके अपने हाथों से अपने पुत्र को पहनाया और तेजस्वी बनाया। कंधे पर लटकती यज्ञोपवीत ऐसी मालूम पड़ती थी जैसे हिमाचल पर्वत गंगा नदी के प्रवाह को ही धारण कर रहा है। बताओ ऐसी हिमाचल पर्वत के समान भरत भगवान, भरत चक्रवर्ती थे। आज चक्रवर्ती तो बनने की प्रक्रिया तक हम आपको ले चल रहे हैं, ऐसे भरत पूरे घर परिवार के अंदर और पूरी अयोध्या नगरी के अंदर सबकी प्रशंसा के पात्र और सबके प्रेम पात्र बने हुए थे। सब लोग उनके साथ खेलने के लिए आतुर रहते थे। तो जिन्हें अरहंत अवस्था की लक्ष्मी प्राप्त होने वाली है ऐसे तीर्थंकर ऋषभ देव के नेत्रों को आनंददायी, अत्यंत सुंदर और असाधारण भरत के मुख को देखते हुए ऋषभ देव परम संतोष को प्राप्त होते थे। उनके सुख का कहना क्या, जहाँ इंद्र स्वयं किंकर बना हुआ था और जहाँ भरत जैसे पुत्र थे, जहाँ यशस्वती सुनंदा जैसी सुंदर और आज्ञाकारिणी धर्म पत्नियां थी, वहां के सुख को क्या कहना है। तो इस प्रकार से परम आनंद का अनुभव उस परिवार के अंदर किया जा रहा है। अब एक दिन क्या होता है, तीर्थंकर ऋषभ देव की द्वितीय रानी, उनका नाम था सुनंदा, और उन सुनंदा रानी ने अद्वितीय सौंदर्य से संयुक्त कामदेव के पद को धारण करने वाले पुत्र को जन्म दिया। कौन थे वे, बाहुबली। वे मरकट मणि के समान हरे हरे वर्ण के थे, ऐसा नहीं था कि हरा हरा वर्ण कुछ बुरा लग रहा हो। अत्यंत सुंदर कांति, एक विशेष अपने आप में सब में अलग दिखने वाले ऐसे बाहुबली नाम के पुत्र को जन्म दिया। तो ऋषभ देव की अनुमति लेकर महाराजा नाभिराय ने अपने इस द्वितीय पोते का नाम रखा बाहुबली। शुरू से ही ऐसा उनका बाहुबल दिखता था, चौड़ी छाती और हट्टी कट्टी भुजाएं, सुंदर पुत्र जिनके सौंदर्य की उपमा दूसरे से लगाना भी मुश्किल है, ऐसे पोते का नाम रखा बाहुबली। जब अपने माता पिता दादी बाबा इन लोगों से सुंदर सुंदर नाम प्राप्त होते हैं ना, तो वैसे गुण आते हैं या वैसे गुणों को देखकर परिवार के लोग नाम रखते हैं। आज आप नाम कैसे रखते हो? आज आप नाम रखते हो अयान, रियान, मयान, तो क्या होगा? म्याऊ म्याऊ करते रहेंगे हैं? तो ये नाम नहीं, ये गूगल के नाम मत रखना, पूर्वजों के नामों के साथ में देखो, बहुत सारे नाम ऐसे हैं, सुंदर सुंदर हैं, नए नए हैं, आपको नए लगेंगे, लेकिन जिन नामों के अंदर कुछ गुण छिपे रहते हैं, अर्थ छिपे रहते हैं, ऐसे नामों को रखना। तो बाहुबली नाम रखा गया, तो यहाँ पर चारित्र थोड़ा भरत से ऋषभ देव पर आ जाता है, क्योंकि वे भी ऋषभ देव के पुत्र थे। तो तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव राज्य अवस्था में दो पत्नियों के साथ सुख पूर्वक रहते थे, यशस्वती और सुनंदा। इनमें से यशस्वती रानी ने भरत को आदि लेकर वृषभ सेन, अनंत वीर्य आदि 100 पुत्रों को जन्म दिया और एक पुत्री को जन्म दिया जिसका नाम रखा गया ब्राह्मी। और सुनंदा रानी ने बाहुबली पुत्र को और सुंदरी नाम की कन्या को जन्म दिया। तो कुल मिलाकर के ऋषभ देव के 101 पुत्र और 2 पुत्रियां हुई। इन सब से समन्वित होकर के महाराजा ऋषभ देव, रानी यशस्वती सुनंदा और दादा दादी के रूप में महाराजा नाभिराय और महारानी मरुदेवी अपने को परम सुखी महसूस कर रहे थे। इन सब बालक बालिकाओं का ऋषभ देव भगवान ने अन्न प्राशन, मुंडन, यज्ञोपवीत आदि सभी संस्कार किए और सुंदर सुंदर हार मुकुट, कंकण, बाजूबंद, करधनी, नूपुर, मुद्रिका आदि आभूषण भी स्वयं कारीगर से डिजाइन दे करके बनवाए। भरत के कंठ में उन्होंने इंद्रच्छद नाम का हार पहनाया और बाहुबली के कंठ में विजयच्छंद नाम का हार पहनाया। सब नोट कर लेना आप भी, ये सुंदर सुंदर हार हजारों हजारों लड़ियों के हार हुआ करते थे। बाहुबली को विजयच्छंद नाम का हार और अन्य सभी पुत्रों को देवच्छंद नाम का हार पहनाया और ब्राह्मी सुंदरी के गले में नक्षत्र माला पहना करके गगन मंडल की शोभा धारण कराई थी। ये सब ऋषभ देव भगवान ने अपने सामने कराया। कर्म युग के आदि में भगवान ऋषभ देव के द्वारा बनवाए गए आभूषणों को धारण करके तेजस्वी भरत तो सूर्य के समान सुशोभित हो रहे थे, युवा बाहुबली चंद्रमा के समान, शेष राजपुत्र ग्रह नक्षत्र तथा तारागण के समान थे, इन राजपुत्रों में ब्राह्मी दीप्ति के समान और सुंदरी चांदनी के समान दिख रही थी। इसलिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि ऐसा सुंदर वर्णन जिनसेन स्वामी आचार्य देव ने किया कि इन सभी पुत्र पुत्रियों से घिरे हुए प्रभु ऋषभ देव ज्योतिषी देवों से घिरे हुए ऊंचे सुमेरु पर्वत की तरह सुशोभित हो रहे थे और ये सभी बालक किशोरावस्था को पार कर युवावस्था में प्रवेश कर रहे थे और ब्राह्मी सुंदरी भी किशोरावस्था में आ चुकी थी। अर्थात 101 भाइयों में 2 पुत्रियां कितनी सुंदर लग रही होंगी, चिंतन करो। कुछ लोग कह देते हैं ब्राह्मी सुंदरी जो पुत्रियां हुई ये कलयुग का अभिशाप था। नहीं, यह अभिशाप नहीं, कन्याओं को रत्न माना गया है और सब देव रत्नाकर हुए। ऐसे आज भी जिस घर के अंदर कन्याएं रहती हैं तो वह पिता रत्नाकर के समान प्रतीत होते हैं। ऐसे भरत स्वामी का और उनके भाई बहनों का चरित्र सुनते रहिए पुण्य कथा को सुनकर पुण्य की अभिवृद्धि होती है। जय लो भरत स्वामी सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय।